संबंध।
अब भगवान सातवें श्लोक में आए हुए मन षष्ठानी इंद्रियाणी पद का खुलासा करते हैं। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। व्याख्या, अधिष्ठाय मनश्चायम्। मन में अनेक प्रकार के अच्छे बुरे संकल्प विकल्प होते रहते हैं, इनसे स्वयं की स्थिति में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि स्वयं चेतन स्वरूप आत्मा तो जड़ शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से अत्यंत परे है और इनका आश्रय तथा प्रकाशक है। संकल्प विकल्प आते जाते हैं और स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहता है। मन का संयोग होने पर ही सुनने, देखने, स्पर्श करने, स्वाद लेने तथा सूंघने का ज्ञान होता है। जीवात्मा को मन के बिना इंद्रियों से सुख दुख नहीं मिल सकता, इसलिए यहां मन को अधिष्ठित करने की बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा मन को अधिष्ठित करके अर्थात उसका आश्रय लेकर ही इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। श्रवणेन्द्रिय अर्थात कानों में सुनने की शक्ति को श्रोत्रम कहते हैं। आज तक हमने अनेक प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल शब्द सुने हैं। अनुकूल शब्दों में स्तुति, मान, बड़ाई, आशीर्वाद, मधुर गान, वाद्य आदि आते हैं और प्रतिकूल शब्दों में निंदा, अपमान, शाप, गाली आदि आते हैं। परंतु उन दोनों ही प्रकार के शब्दों से अपने स्वयं स्वरूप में क्या फर्क पड़ा? किसी को कहा जाए कि भाई तुम्हारे पौत्र का जन्म हुआ है और उसी क्षण उसको यह भी कहा जाए कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई, दोनों बातों को वो एक साथ सुनता है। दोनों समाचार सुनने से एक के जन्म तथा दूसरे की मृत्यु का जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में कोई अंतर नहीं आया। जब ज्ञान में भी कोई अंतर नहीं आया तो फिर ज्ञाता में अंतर आएगा ही कैसे? अतः जन्म और मृत्यु का समाचार सुनने से अंतःकरण में माने हुए संबंधों के कारण ही असर होता है। उसकी तरफ दृष्टि न रखकर इस ज्ञान पर दृष्टि रखनी चाहिए। इसी तरह अन्य इंद्रियों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। नेत्रेंद्रिय अर्थात नेत्रों में देखने की शक्ति चक्षु है। आज तक हमने अनेक सुंदर, असुंदर, मनोहर, भयानक रूप देखे हैं, पर उनसे अपने स्वरूप में क्या फर्क पड़ा? स्पर्शेंद्रिय अर्थात त्वचा में स्पर्श करने की शक्ति को स्पर्शनम कहते हैं। जीवन में हमें अनेक कोमल, कठोर, चिपचिपे, ठंडे, गर्म आदि स्पर्श प्राप्त हुए हैं, पर उनसे स्वयं की स्थिति में क्या अंतर आया? रसनेन्द्रिय अर्थात जीभ में स्वाद लेने की शक्ति रसनम कहलाती है। कड़वा, तीखा, मीठा, कसेला, खट्टा, नमकीन, ये छह प्रकार के भोजन के रस है। आज तक हमने तरह तरह के रस युक्त भोजन किए हैं, पर विचार करना चाहिए कि उनसे स्वयं को क्या प्राप्त हो गया। घ्राणेन्द्रिय अर्थात नाक में जो सूंघने की शक्ति है उसको घ्राणम कहते हैं। जीवन में हमारी नासिका ने तरह तरह के सुगंध दुर्गंध ग्रहण की है, पर उनसे स्वयं में क्या फर्क पड़ा। विशेष बात, श्रोत्र का वाणी से, नेत्र का पैर से, त्वचा का हाथ से, रसना का उपस्थ से और घ्राण का गुदा से घनिष्ठ संबंध है। माने पांचों ज्ञानेंद्रियों का पांचों कर्मेंद्रियों से संबंध है। जैसे जो जन्म से बहरा होता है वो गूंगा भी होता है, पैर के तलवे में तेल की मालिश करने से नेत्रों पर तेल का असर पड़ता है, त्वचा के होने से ही हाथ स्पर्श का काम करते हैं, रसनेन्द्रिय के वश में होने से उपस्थेन्द्रिय भी वश में हो जाती है, घ्राण से गंध का ग्रहण तथा उससे संबंधित गुदा से गंध का ग्रहण होता है। पंच महाभूतों में एक एक महाभूत के सत्वगुण अंश से ज्ञानेन्द्रियां, रजोगुण अंश से कर्मेंद्रियां और तमोगुण अंश से शब्दादि पांचों विषय बने हैं। जैसे आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्र, रजोगुण अंश से वाक और तमोगुण अंश से शब्द बनाए, वायु के सात्विक अंश से त्वचा, रजोगुण अंश से हस्त और तमोगुण अंश से स्पर्श, अग्नि रूप भूत से सात्विक अंश से नेत्र, अग्नि के सात्विक अंश से नेत्र, राजस अंश से पाद माने पैर और तमोगुण अंश से रूप, जल के सात्विक अंश से रसना, रजोगुण से उपस्थ और तमोगुण से रस, पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राण, रजोगुण अंश से गुदा और तमोगुण अंश से गंध। फिर पांचों महाभूतों के मिले हुए सात्विक अंश से मन और बुद्धि, रजोगुण अंश से प्राण और तमोगुण अंश से शरीर बनाए। विषयान उपसेवते, जैसे व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह दुकान लगाता है, ऐसी जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। और जैसे पहले शरीर में विषयों का राग पूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीर में जाने पर, उसी स्वभाव के साथ में रहने पर विषयों का सेवन करने लगता है। इस प्रकार ये जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति करने के कारण ऊंच नीच योनियों में भटकता ही रहता है। भगवान ने ये मनुष्य शरीर अपना उद्धार करने के लिए दिया है, सुख दुख भोगने के लिए नहीं। जैसे ब्राह्मण को गाय दान करने पर हम उसको चारा पानी तो दे सकते हैं, पर उस दी हुई गाय का दूध पीने का हमें हक नहीं है। ऐसे ही मिले हुए शरीर का सदुपयोग करना तो हमारा कर्तव्य है, पर इसे अपना मानकर सुख भोगने का हमें हक नहीं है। विशेष बात, विषय सेवन करने से परिणाम में विषयों में राग आसक्ति ही बढ़ती है, जो कि पुनर्जन्म तथा संपूर्ण दुखों का कारण है। विषयों में वस्तुतः सुख है भी नहीं, केवल आरंभ में भ्रमवश सुख प्रतीत होता है। विषयेन्द्रिय संयोगाद यत्तद अग्रे अमृतोपमम, 18 का 38, अगर विषयों में सुख होता ही तो जिनके पास प्रचुर भोग सामग्री है, बहुत बड़े बड़े धनी है, भोगी है और पदाधिकारी है, कम से कम वे तो सुखी हो ही जाते, पर वास्तव में देखा जाए तो पता चलता है कि वे तो बहुत ज्यादा दुखी और अशांत हैं। कारण यह है कि भोग पदार्थों में सुख है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं और हो सकता भी नहीं। सुख की इच्छा अंदर रख करके फिर जो भोग भोगे गए, उन भोगों से धैर्य नष्ट हुआ, ध्यान नष्ट हुआ, रोग पैदा हुए, चिंता हुई, व्यग्रता हुई, पश्चाताप हुआ, बेइज्जती हुई, बल गया, धन गया, शांति गई, एवं प्रायः शोक, दुख, उद्वेग आए, ऐसा ये परिणाम विचारशील व्यक्ति के प्रत्यक्ष देखने में आता है। भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में लिखा है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, स्तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। जिस प्रकार स्वप्न में जल पीने से प्यास नहीं बिटती, उसी प्रकार भोग पदार्थों से न तो शांति मिलती है और न जलनी मिटती है। मनुष्य सोचता है कि इतना धन हो जाए, इतना संग्रह हो जाए, इतनी अमुक अमुक वस्तुएं प्राप्त हो जाए और शांति मिल जाएगी, किंतु उतना हो जाने पर भी शांति तो नहीं मिलती, उल्टे वस्तुओं के मिलने से उनकी लालसा और बढ़ती है। न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। धन आदि भोग पदार्थों के मिलने पर भी और मिले और मिले और मिले, ये क्रम चलता ही रहता है, परंतु संसार में जितना धन धान्य है, जितनी सुंदर स्त्रियां हैं, जितनी उत्तम वस्तुएं हैं, वे सब की सब एक साथ किसी एक व्यक्ति को मिल भी जाए तो भी उनसे उसे तृप्ति नहीं हो सकती। यत् पृथिव्याम व्रीहियवम हिरण्यम पशव स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत। इसका कारण यह है कि जीव अविनाशी परमात्मा का अंश है और चेतन है, और भोग पदार्थ नाशवान प्रकृति के अंश हैं और जड़ हैं। अब चेतन की भूख जड़ पदार्थों के द्वारा कैसे मिट सकती है? जैसे भूख तो है पेट में और हलवा बांध दिया जाए पीठ पर, तो फिर भूख कैसे मिट सकती है? प्यास लगने पर बढ़िया से बढ़िया गर्मा गर्म हलवा खाने पर भी प्यास नहीं मिट सकती। इसी प्रकार जीव को प्यास तो है चिन्मय परमात्मा की, पर वह उस प्यास को मिटाना चाहता है जड़ पदार्थों के द्वारा, इससे तृप्ति नहीं हो सकती। तृप्ति तो रही बहुत दूर, बल्कि ज्यों ज्यों जड़ पदार्थों को अपनाता है त्यों त्यों उसकी भूख बढ़ती ही जाती है। यह इसकी कितनी बड़ी भारी भूल हो रही है। साधक को सोचना चाहिए कि वह आज ही यह दृढ़ विचार कर ले कि मुझे भोग बुद्धि से विषयों का सेवन करना ही नहीं है। उसका यह पक्का निर्णय हो जाए कि संपूर्ण संसार मिलकर भी मुझे तृप्त तो नहीं कर सकता। विषय सेवन न करने का दृढ़ विचार होने से इंद्रियां निर्विषय हो जाती हैं, और इंद्रियों के निर्विषय हो जाने से मन निर्विकल्प हो जाता है। मन के निर्विकल्प होने से बुद्धि स्वतः सम हो जाती है, और बुद्धि के सम हो जाने से परमात्मा की प्राप्ति का स्वतः अनुभव हो जाता है। गीता पांचवा अध्याय 19वां श्लोक। क्योंकि परमात्मा तो सदा ही प्राप्त है, विषयों में प्रवृत्ति होने के कारण ही उनकी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो पाता। सुख भोग और संग्रह, इन दो में जो आसक्त हो जाते हैं, उनके लिए परमात्मा प्राप्ति तो दूर रही, वे परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय भी नहीं कर पाते। गीता दूसरे अध्याय का 44वां। भोग ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तया परहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के अंत में प्रार्थना करते हैं, कामिहि नारि पियारि जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहिराम। जैसे कामी को स्त्री अर्थात भोग और लोभी को धन अर्थात संग्रह प्यारा लगता है, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी का रूप और राम जी का नाम मुझे निरंतर प्यारा लगे। तात्पर्य यह है कि जैसे कामी स्त्री के रूप में आकृष्ट होता है, ऐसे ही मैं रघुनाथ जी के रूप में निरंतर आकृष्ट रहूं। और जैसे लोभी धन का संग्रह करता रहता है, ऐसे ही मैं राम नाम का निरंतर संग्रह करता रहूं। राम नाम के निरंतर संग्रह का स्वरूप होता है जप, जप करता रहूं। संसार का भोग और संग्रह निरंतर प्रिय नहीं लगता है, ये नियम है, पर भगवान का रूप और नाम निरंतर प्रिय लगता है। संतों ने भी अपना अनुभव कहा है, चाक चाक सब छाड़िया माया रस खारा हो नाम सुधारस पीजिए छिन बारम बारा हो लागे मोहि राम जी पियारा हो। परिशिष्ट भाव, विषयों का सेवन करने से स्वयं की गौणता हो जाती है और शरीर संसार की मुख्यता हो जाती है, इसलिए स्वयं भी जगत रूप हो जाता है। 7वें अध्याय का 13वां।